नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में सीवान में 5,900 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर बिहार को पलायन का प्रतीक बनाने का आरोप भी लगाया। कैलाश मानसरोवर यात्रा सिक्किम के नथुला से शुरू, 36 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में प्रवेश किया। ईरान के विदेश मंत्री पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों से जिनेवा में परमाणु वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और असम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। मॉनसून अगले 2 से 3 दिनों में उत्तर तथा मध्य भारत में और सक्रिय होगा। अरुणाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में पूरे राज्य में मध्यम से मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच आज से लीड्स के हेनिंग्ले में खेला जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल तथा कांग्रेस पर निशाना साधा है और उन पर बिहार को पलायन का प्रतीक बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने आज कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ही राज्य को विकास के रास्ते पर वापस लाया है। श्री मोदी ने कहा है कि राज्य के युवाओं ने बिहार की दयनीय स्थिति के बारे में सिर्फ सुना है और उन्हें यह अंदाजा नहीं है कि पिछली सरकारों ने कार्यकाल के दौरान राज्य में किस तरह का कुशासन किया था। श्री मोदी ने सीवान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने बिहार के लोगों को विश्वास दिलाया है कि उनकी सरकार राज्य के विकास के लिए काम करना जारी रखेगी। श्री मोदी ने जोर देकर कहा है कि पूरी दुनिया भारत के विकास की सराहना कर रही है और देख रही है कि कैसे भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि बिहार इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है।
मैं कल ही विदेश से लौटा हूं। इस दौर में मेरी दुनिया के बड़े बड़े समृद्ध देशों के नेताओं से बात हुई। सारे नेता भारत की तेज प्रगति से बहुत प्रभावित है। वो भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनते देख रहे हैं। इसमें बिहार की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है।
इससे पहले प्रधानमंत्री ने सीवान में 5,900 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें शहरी विकास, सीवेज प्लांट, पीएम आवास योजना, रेल और बिजली क्षेत्र की परियोजनाएं शामिल है। श्री मोदी ने बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले 400 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत से तैयार वैशाली देवरिया रेल लाइन परियोजना राष्ट्र को समर्पित की और पाटलिपुत्र तथा गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। श्री मोदी आज ओडिशा के भुवनेश्वर में राज्य का एक वर्ष का कार्यकाल पूरे होने पर आयोजित राज्य स्तर के समारोह की अध्यक्षता भी करेंगे। प्रधानमंत्री वहां 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगजनों को जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्नत तकनीकों की मदद से दिव्यांगजन मुख्यधारा में प्रभावी रूप से योगदान दे सकते हैं। राष्ट्रपति आज उत्तराखंड के देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में विद्यार्थियों को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन का उद्घाटन किया। ये दोनों ही 24 जून से आम जनता के लिए खोले दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने आज राष्ट्रपति निकेतन में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। कैलाश मानसरोवर यात्रा आज से सिक्किम के नथुला में शुरू हो गई है। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने आज यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 36 तीर्थयात्रियों और अधिकारियों का पहला जत्था कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। नथुला की दूसरी ओर चीनी अधिकारी उनका स्वागत करने के लिए मौजूद रहे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री माथुर ने तीर्थयात्रियों से बातचीत की और उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। संस्कृति मंत्रालय 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश के 100 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर 50 अन्य सांस्कृतिक स्थलों पर योग सत्रों का आयोजन कर रहा है। ये सत्र आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रमुख योग कार्यक्रम के अतिरिक्त होंगे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल होने वाले आयोजन के लिए तैयारियां की जा रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम खुले में योग करने के अब तक के सबसे बड़े आयोजनों में से एक होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आज सवेरे हैदराबाद में आयोजित कार्यक्रमों में हजारों योग साधकों और विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। दुनिया के शेष हिस्सों की तरह अरुणाचल प्रदेश भी कल 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने की तैयारियां जोरों पर कर रही है। राज्य स्तरीय समारोह ईटानगर में होगा, जिनमें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वीराम वहागे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आयुष मंत्रालय के तहत IDY 2025 के लिए राज्य नोडल अधिकारी डॉ अरविंद कुमार ने बताया है कि समारोह में सभी क्षेत्रों के लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से एक विशेष योग संगम कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। IDY 2025 का एक प्रमुख कार्यक्रम योग संगम का उद्देश्य 1,00,000 से अधिक स्थानों पर समन्वित योग प्रदर्शनों के माध्यम से देश भर के लोगों को एकजुट करना है, जिससे राष्ट्रीय एकता और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलेगा। कल भारत सहित पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन होने जा रहा है, और इसलिए आप भी आगे आए और योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाए।
कुछ लोग सोचते हैं योग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तो सोच में होनी चाहिए ना, ना कोई बंधन ना कोई बॉडी टाइप। बचपन हो या पचपन, व्हीलचेयर हो या वर्क फ्रॉम होम, योग सबका हक है।
योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है।
आइए इस 21 जून हम सब हिस्सा बने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का और करें स्ट्रेच एंड चिल योग के साथ।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत जल्द ही वैश्विक नवाचार का केंद्र बन जाएगा। श्री गोयल ने कल लंदन में फ्यूचर फ्रंटियर्स फोरम में साइंस म्यूजियम ग्रुप के निदेशक सर इयान ब्लेचफोर्ड के साथ बातचीत में ये बात कही। उन्होंने कहा है कि भारत अगले 15 वर्षों में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े पैमाने पर निवेश करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रूस में सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच से अलग सऊदी अरब के परिवहन और लॉजिस्टिक सेवा मंत्री सालेह अलजार सेर के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने अपने अपने देशों की आधारभूत परियोजनाओं और इस क्षेत्र में लॉजिस्टिक कॉरिडोर के बारे में भी चर्चा की। संचालन और रखरखाव से जुड़े कारणों से एयर इंडिया की कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई है या कम कर दी गई है। एयर इंडिया के बयान के अनुसार अमृतसर से लंदन और गोवा से लंदन की उड़ान 15 जुलाई तक, दिल्ली से नैरोबी की उड़ान 30 जून तक नहीं चलेंगी। वक्तव्य में यह भी बताया गया है कि कल से 15 जुलाई तक दिल्ली से टोरंटो, वाशिंगटन, लंदन, पेरिस, वियना, मेलबर्न और टोक्यो की विभिन्न उड़ानों की संख्या में कमी की गई है। छत्तीसगढ़ में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक महिला नक्सली मारी गई है। मुठभेड़ कांकेर जिले के आमाटोला और कालपर इलाके में जंगलों में हुई। खुफिया जानकारी के आधार पर जिला रिजर्व गार्ड और सीमा सुरक्षा बल की संयुक्त टीमों की अभियानों के लिए रवाना किया गया। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच गोलीबारी जारी है। मुठभेड़ स्थल और आपास के इलाकों में तलाशी अभियान की जा रही है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची आज जिनोवा में जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। मीडिया खबरों के अनुसार इन तीनों देशों का मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ईरानी विदेश मंत्री के साथ परमाणु वार्ता से पहले जिनोवा में जर्मनी के स्थायी मिशन और यूरोपीय संघ की शीर्ष राजनयिक कायाकल्प से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग का आज दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और असम में तेज बारिश का अनुमान है। मॉनसून अगले 2 से 3 दिनों में उत्तर और मध्य भारत में और सक्रिय होगा। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ आर के जनामणि ने कहा है कि अगले 2 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और झारखंड में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर अरुणाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में पूरे राज्य में मध्यम से मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार वर्षा और बाढ़ के कारण अब तक 33,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के क्रांतादि जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और तेज बारिश होने की संभावना है। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी का पहला मैच आज से लीड्स में खेला जा रहा है। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू हुआ। अंतिम समाचार मिलने तक भारतीय टीम बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर में 56 रन बना चुकी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।